लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। दिल एक्सित नोस के तीसरे अध्याय का शीर्षक है यह हृदय है जिसने हमें गहराई से प्रेम किया है। इस अध्याय में संत पापा फ्रांसिस त्रिएक ईश्वरीय आयाम पवित्र आत्मा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में हमने संत बेनेडिक्त 16वें के विचारों से अपने को अवगत कराया, जो यीशु ख्रिस्त के हृदय में इस बात को पहचानने का हमें आह्वान करते हैं कि उनकी उपस्थिति को हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हुए अपने रोज दिन के जीवन में अनुसरण करें। हर व्यक्ति को अपने जीवन के केंद्र बिंदु की आवश्यकता है, जहां वह अपने जीवन की सच्चाई और अच्छाई का अनुभव करते हुए उसे अपने जीवन की घटनाओं, परिस्थितियों और रोज दिन के संघर्षरत जीवन में जी सके। हम सब जब हम अपनी शांति में बने रहते हैं तो हमें चाहिए कि हम न केवल अपने हृदय की धड़कन को सुने, बल्कि उससे भी बढ़कर एक विश्वसनीय उपस्थिति की धड़कन को, जो विश्वास के इंद्रियों से अनुभव की जा सकती है और यह उससे भी अधिक वास्तविक है, मसीह की उपस्थिति जो विश्व के हृदय हैं। यीशु ख्रिस्त के हृदय की अर्थपूर्ण और प्रतीकात्मक छवि हमारे लिए केवल पवित्र आत्मा से दी मान्यता प्राप्त वह साधन नहीं है जहां हमारा मिलन ख्रिस्त के प्रेम से होता है। यद्यपि जैसे कि हमने इसे देखा है, यह हमारे लिए अति विशेष है, अतः हमें इसे निरंतर समृद्ध, गहरा और अपने चिंतन, प्रार्थना के माध्यम, सुसमाचार के पठन पाठन और आध्यात्मिकता में विकास करने के द्वारा इसे नवीन बनाने की आवश्यकता है। संत पापा पियूस 11वें हमारे लिए इस बात को स्पष्ट कराते हैं कि कलीसिया इस बात का दावा नहीं करती है कि हमें यीशु के हृदय की एक औपचारिक छवि पर चिंतन और आराधना करनी चाहिए, अर्थात एक सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय दिव्य प्रेम की निशानी पर, क्योंकि इस प्रेम का सार किसी भी निर्मित छवि द्वारा पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं की जा सकती है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त के पवित्र हृदय की आराधना करना हम ख्रिस्तियों के लिए जरूरी है, इस हद तक कि यह प्रभु के दिव्य और मानवीय प्रेम के रहस्य के प्रति हमारे विश्वास और आराधना में खुलेपन को व्यक्त करता है। इस अर्थ में हम पुनः एक बार इस बात को लेकर सुनिश्चित हो सकते हैं कि पवित्र हृदय सुसमाचार का संक्षेपण है। हमें इस बात को याद करने की जरूरत है कि कुछ दर्शनी या संतों से संबंधित कुछ रहस्यात्मक बातें जिन्होंने मसीह के हृदय के प्रति भक्ति को उत्साहपूर्वक प्रोत्साहित किया, वे ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें विश्वासियों को इस तरह मानने के लिए बाध्य किया जाता हो मानो वे ईश्वर के वचन हों। यद्यपि वे हमारे लिए प्रोत्साहन के समृद्ध स्रोत हैं और उनके द्वारा हमें वृहद रूप में लाभ होता है, जो भी कि हम उन्हें किसी को अनुसरण करने हेतु दबाव नहीं डाल सकते हैं यदि वे आध्यात्मिक यात्रा में सहायक ना हों। वहीं जबकि हमें उस बात को याद करने की जरूरत है जैसे कि संत पापा पियूस 11वें हमें इंगित कराते हुए कहते हैं, हम इस आराधना को यह नहीं कह सकती कि इस रहस्य का प्रकटीकरण व्यक्तिगत रूप से हुआ है। श्रोताओं, महीने के हर प्रथम शुक्रवार को पवित्र यूखरिस्तीय भोज में भाग लेने को प्रोत्साहित करना उदाहरण के लिए एक समय एक शक्तिशाली संदेश के रूप में प्रसारित हुआ जब लोगों ने प्रसाद ग्रहण बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें ईश्वरीय करुणा और क्षमा पर विश्वास नहीं रह गया था और वे प्रभु भोज को पूर्ण समर्पण के लिए एक प्रकार का उपहार स्वरूप देखते थे। जैनसेनवाद के संदर्भ में इस अभ्यास का प्रसार अपने में बहुत लाभदायक रहा क्योंकि इसके द्वारा एक स्पष्ट अनुभूति सामने आई कि यूखरिस्त में ख्रिस्त के हृदय के प्रेम की सदैव उपस्थिति हमें उनके संग संयुक्त होने का निमंत्रण देती है। इसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि हमारे समय में भी इसका अभ्यास एक अलग कारण से वैसे ही हितकारी हो सकता है। आज की दुनिया की उन्मत्त गति और अपने लिए खाली समय, उपभोक्ता और मनोरंजन, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के प्रति हमारे जुनून के बीच हम अपने जीवन को यूखरिस्त से मिलने वाली शक्ति से पोषित करना भूल जाते हैं। श्रोताओं, जबकि हम किसी को गुरुवार की एक घंटे आराधना हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं, वहीं हम इसके अभ्यास को निश्चित रूप में बढ़ावा दे सकते हैं जब हम इसे भक्ति भाव से अपने भाई बहनों के संग एकता में करते हुए यीशु ख्रिस्त के हृदय के अनंत प्रेम को अपने लिए खोजते हैं। तो हम कलीसिया के संग मिलकर ईश्वरीय प्रेम के चिन्ह और प्रकटीकरण की आराधना करते हैं जो मानव जाति को प्रेम करने हेतु शब्द के रूप में देह धारण करते हुए हमारे बीच में निवास किया। बहुत से जैसेनिस्टों को यह समझने में कठिनाई का अनुभव हुआ क्योंकि वे मानवीय भावनात्मक और भौतिक हर चीज को तिरछी नजर से देखते थे और इस प्रकार वे इस भक्ति को सर्वशक्तिमान ईश्वर की शुद्ध उपासना से मानव को दूर करने वाला मानते थे। संत पापा पियूस 11वें ने इसे मिथ्या रहस्यवाद स्वरूप परिभाषित किया जहां अभिजात समूहों के विचार जिन्होंने ईश्वर की उत्कृष्टता को अलग और अपने से दूर देखते हुए लोकप्रिय धर्म निष्ठा की अभिव्यक्ति को खतरनाक घोषित किया और उनके लिए कलीसियाई निगरानी की आवश्यकता समझी। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि आज हम इस बात से अपने में सहमत हो सकते हैं कि जैसेसिज्म के स्थान में आज हम सांसारिकता की एक शक्तिशाली आंधी को पाते हैं जो ईश्वर के बिना एक विश्व का निर्माण करने की चाह रखते हैं। हमारे समाजों में आज हम इस तरह के बहुत से प्रचलित प्रथाओं को पनपता हुआ पाते हैं जिसका ईश्वर के संग व्यक्तिगत संबंध से कुछ लेना देना नहीं है बल्कि ये एक अमूर्त आध्यात्मिकता की नई अभिव्यक्तियां हैं। संत पापा फ्रांसिस हमें इस बात से सचेत कराते हैं कि कलीसिया में एक घातक जैनसिस्ट द्वैतवाद नए रूप में फिर से उभरा है। हाल के दशकों में इसने नई ताकत हासिल की है लेकिन यह उस ज्ञानवाद की दोबारा पुनरावृत्ति है जो ख्रिस्तीय धर्म की प्रारंभिक शताब्दियों में एक बड़ा आध्यात्मिक खतरा साबित हुआ था क्योंकि इसने शरीर की मुक्ति की वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यही कारण है कि मैं अपनी निगाहों को ख्रिस्त के हृदय की ओर उन्मुख करता हूँ, संत पापा कहते हैं, और आप सबों को इसे नवीकृत करने हेतु निमंत्रण देता हूँ। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मुझे आशा है कि यह आज की संवेदनशीलता को फिर प्रभावित करेगा और यह हमें पुराने और नए दैत्यवादों का सामना करने में मदद करेगा जिनके लिए यह भक्ति एक प्रभावकारी काट जान पड़ती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस अर्थात उसने हमें प्रेम किया की चर्चा सुनी। हम इसकी चर्चा आगे भी करेंगे।
प्रभुवर मेरा चरवाहा है, किसी चीज की कमी नहीं।
प्रभुवर मेरा चरवाहा है, किसी चीज की कमी नहीं।
प्रभुवर मेरा चरवाहा है, किसी चीज की कमी नहीं।
प्रभुवर मेरा चरवाहा है, किसी चीज की कमी नहीं।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने आज भी एक आरामदायक रात बिताई और सुबह लगभग 8 बजे उठे। यह जानकारी वैटिकन प्रेस कार्यालय ने मंगलवार को दी। इससे पहले पोप के डॉक्टरों ने कहा था कि भले ही उन्हें अस्पताल में और समय बिताना पड़े, लेकिन उनकी स्थिति अब संदेशपद नहीं है। सोमवार शाम को वैटिकन प्रेस कार्यालय ने पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य पर अपडेट जारी की, जिसमें कहा गया है कि उनके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार को देखते हुए पोप के रोग का लक्षण अब संदेशपद नहीं रह गया है। बयान में बतलाया गया है कि पोप की नैदानिक स्थिति स्थिर बनी हुई है। पिछले दिनों दर्ज किए गए सुधार और भी मजबूत हुए हैं, जिसकी पुष्टि खून जांच और नैदानिक निष्कर्षों के साथ साथ औषधीय उपचार के प्रति पोप की अच्छी प्रतिक्रिया से भी हुई है। इन कारणों से बयान में स्वीकार किया गया है कि डॉक्टरों ने आज रोग के लक्षण के प्रति संदेह हटाने का फैसला किया। हालांकि पोप की नैदानिक तस्वीर की जटिलता और अस्पताल में भर्ती होने के समय मौजूद गंभीर संक्रमण को देखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी भी कुछ समय के लिए अस्पताल में औषधीय उपचार जारी रखना आवश्यक होगा। सोमवार सुबह संत पापा रोमन कुरिया के साथ वैटिकन के पॉल अष्टम सभागार में एक वीडियो लिंक के माध्यम से आध्यात्मिक साधना में भाग लेने में सक्षम रहे और उसके बाद पौत्र यूखरिस्त ग्रहण किए तथा कुछ समय प्रार्थना करने के लिए अपने कमरे के चैपल में बिताए। रोमन कुरिया की आध्यात्मिक साधना, जिसे हर साल आयोजित की जाती है, रविवार दोपहर को वैटिकन के पॉल अष्टम सभागार में शुरू हुई, जिसका संचालन रोमन कुरिया के उपदेशक फादर रोबेर्टो पासोलिनी ओएफएम कैप कर रहे हैं। दोपहर में संत पापा आध्यात्मिक साधना में फिर शामिल हुए। इस प्रकार उन्होंने पूरे दिन को बारी बारी से प्रार्थना और आराम करते हुए बिताया। पोप फ्रांसिस ने अर्जेंटीना के बंदरगाह शहर बाहिया ब्लांका में आई विनाशकारी बाढ़ के लिए अपना दुख व्यक्त किया है, जो शुक्रवार और शनिवार के बीच कुछ ही घंटों की बारिश से जलमग्न हो गई। रोम के जेमेली अस्पताल से, जहां वे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने बाहिया ब्लांका के महाधर्मदर्स कार्लोस अल्फोंसो अल्पीरोस कोस्टा ओपी को स्पैनिश में एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें बाहिया ब्लांका के साथ साथ सेरी शहर को तबाह करने वाली त्रासदी को याद किया। त्रासदी में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं और करीब 3 व्यक्ति अभी भी लापता हैं।
बचाव कर्मी 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों शहरों में लगभग पूरी तरह से बाढ़ आने के कारण उनके प्रयास मुश्किल हो गए हैं। अपने संदेश में पोप फ्रांसिस ने बाहिया ब्लांका के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदा के लिए दुख व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि कई लोगों की जान चली गई और भारी नुकसान हुआ। उन्होंने प्रार्थना का आश्वासन देते हुए कहा, मैं मृतकों की शांति के लिए दिल से प्रार्थना करता हूँ और पूरी जनता के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करता हूँ तथा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे शोक संतप्त लोगों एवं उन सभी लोगों को सांत्वना प्रदान करें जो इस दर्द एवं अनिश्चितता के क्षणों में पीड़ित हैं। उन्होंने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की जो लापता लोगों की खोज करने और तबाह क्षेत्रों के पुनर्निर्माण की कठिन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंत में पोप ने दया की माता से अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के समक्ष उन सभी लोगों के लिए मध्यस्थता करने हेतु प्रार्थना की जो इस आपदा से प्रभावित हैं तथा उन्हें स्नेहपूर्ण अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। त्रासदी के बाद अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। रोमन कोरिया के आध्यात्मिक साधना के संचालक फादर रोबर्टो पासोलिनी ओएफएम कैप ने 2025 के आध्यात्मिक साधना का चौथा चिंतन प्रस्तुत किया, जिसमें संत पापा फ्रांसिस भी वीडियो लिंक के माध्यम से भाग ले रहे हैं। चिंतन का शीर्षक है द्वितीय मृत्यु। अपने चिंतन में फादर रोबर्टो पासोलिनी कहते हैं, पौत्र बाइबल मानव इतिहास को अनंत जीवन की प्रतिज्ञा और मृत्यु की वास्तविकता के बीच तनाव के रूप में वर्णित करता है। इसराइल अपनी निष्ठा और बेवफाई के साथ इस संघर्ष को मूर्त रूप देता है, लगातार प्रतिज्ञा देश की तलाश करता है। वहीं संत पौलुस मनुष्यों के बारे में मरते हुए लेकिन जीवित रहने की बात करते हैं, जो अस्तित्व के विरोधाभास को व्यक्त करता है। नबी एजेकियल ने सूखी हड्डियों की घाटी के बारे दिव्य दर्शन के साथ इस स्थिति का वर्णन किया है। इसराइल एक खुली हवा में कब्रस्थान के रूप में दिखाई देता है, जिसमें जीवन या आशा नहीं है। ईश्वर नबी को हड्डियों से भविष्यवाणी करने का आदेश देते हैं, जो फिर से खुद को इकट्ठा करते और उसमें मांस आ जाता है, लेकिन जब तक आत्मा उनमें प्राण नहीं डालता तब तक वे बेजान रहती हैं। फादर पासोलिनी कहते हैं कि नबी का दिव्य दर्शन केवल इसराइलियों के निर्वासन से लौटने का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह मानवीय स्थिति को दर्शाता है। अक्सर हम भी बेजान जीवन जीते हैं। सूखी हड्डियां पहली मृत्यु आंतरिक मृत्यु का प्रतीक है, जो भय उदासीनता और आशा की कमी में प्रकट होती है। पाप करने के बाद आदम और हेवा के साथ भी यही हुआ था। उनका शरीर जीवित था लेकिन ईश्वर से अलग। केवल ईश्वर की आत्मा ही हमें एक बार फिर सच्चा जीवन दे सकती है। हालांकि एक द्वितीय मृत्यु भी है, जिससे अक्सर अनंत विनाश के रूप में समझा जाता है। जो लोग पहली मृत्यु के भ्रम पर काबू पा चुके हैं, वे बिना किसी भय के दूसरी मृत्यु का सामना भी कर सकते हैं। प्रकाशना ग्रंथ पुष्ट करता है कि विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। जो विश्वास और आशा में जीता है वह इससे कुचले बिना पार हो सकता है। एजेकियल का दिव्य दर्शन हमें सिखलाता है कि पुनरुत्थान पहले ही शुरू हो चुका है। ईश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए हमारे मरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि हमें वर्तमान में ही प्रदान करते हैं, यदि हम उनकी आत्मा का स्वागत करते। सवाल यह है कि क्या हम सूखी हड्डियां बने रहना चाहते हैं या खुद को सच्चे जीवन से पुनर्जीवित होने देना चाहते हैं। अलेपो की कलीसिया के प्रमुख प्रेरितिक विकर मध्य पूर्वी देश के तटीय क्षेत्रों में वर्तमान सरकारी बलों और अलावी लोगों, जिनमें से अधिकांश पूर्व असद समर्थक हैं, के बीच पिछले कुछ दिनों से हो रहे झड़पों के बारे में बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी सीरिया में शांति स्थापित करने में योगदान देगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।